ओम शांति। मीठे बाप दादा के हम सभी श्रेष्ठ कर्मधारी आत्माएं हैं। हम आप सबको कर्मों की गोह गति उससे प्राप्ति और उससे नुकसान सब कुछ मालूम है, फिर भी बाबा हम आप सब बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता रहता है। तो आज हम सब विचार करते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते और हर कर्म का फल और बल क्या है। तो कर्म पांच प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार के कर्मों का बल और फल अवश्य मिलता है। सबसे पहला है देह अभिमान बस, अर्थात पांच विकारों बस किया हुआ कर्म। इससे क्या बल मिलता है कि सारी शक्ति छीण हो जाती है। जो भी आत्मा में शक्ति होती है सब खत्म हो जाती है और फल क्या मिलता है, दुख और अशांति। तो देह अभिमान बस किया हुआ कर्म दुख और अशांति देता है, सारी शक्ति छीण होती है। दूसरा कर्म है साधारण कर्म। साधारण कर्म अर्थात देह भान बस किया हुआ कर्म। देह भान तो सतयुग में भी होता है, कर्म वहां भी करते हैं, लेकिन सतयुग में प्रकृति दासी है, प्रकृति सतो प्रधान है, आत्मा भी सतो प्रधान है, माया वहां नहीं है, इसलिए वहां का किया हुआ कर्म अकर्म बन जाता है। फल इस समय के पुरुषार्थ की प्रलब्ध भोग रहे होते हैं, इसलिए सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में देह भान बस किया हुआ कर्म, क्योंकि यहां प्रकृति भी तमो प्रधान है, आत्मा भी नंबर वार है, इसलिए साधारण कर्म का बल थोड़ा क्षीण होता है और फल थोड़ा दुख मिलता है। तीसरा है अलौकिक कर्म या दिव्य कर्म। ये अलौकिक कर्म या दिव्य कर्म ये श्री ब्राह्मण आत्माएं ही कर सकती हैं। अलौकिक अर्थात जो लौकिक दुनिया वाले ना कर सके, तो कौन सा ऐसा काम है जो ब्राह्मण आत्माएं कर सकती हैं, दुनिया वाले नहीं। वो काम है भगवान का परिचय देना। दुनिया वाले तो भगवान को जानते ही नहीं, तो परिचय क्या देंगे। ब्राह्मण आत्मा ही भगवान का परिचय अन्य आत्माओं को देती है। यज्ञ का कोई भी कर्म तन मन धन के द्वारा किया हुआ कर्म अलौकिक कर्म है, दिव्य कर्म है। दिव्य कर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कर्म से आत्माएं देवी या देवता बन जाती है, इसलिए ये कर्म दिव्य कर्म है। इस कर्म की महानता बहुत ज्यादा है। चाहे यज्ञ का कोई भी कर्म कर रहे हैं, झाड़ू पोंछा भी यज्ञ में लगा रहे हैं, तो भी इसी कर्म से वो आत्मा देवी या देवता बन जाएगी। क्यों? भगवान के रचे हुए यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, चाहे मधुबन चाहे सेंटर, कहीं भी सेवा करते हैं यज्ञ की सेवा है। सेंटर यज्ञ है, मधुबन महायज्ञ है, लेकिन सेवा बाबा के रचे हुए यज्ञ की कर रहे हैं। महानता यज्ञ की सेवा की है। चौथा कर्म है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म अर्थात स्वयं को बाबा के साथ, स्वयं मतलब आत्मा, आत्मा को बाबा के साथ कनेक्ट करके अपने पापों को भस्म करना, ये है श्रेष्ठ कर्म। बाबा से कनेक्शन जोड़कर प्रकृति को पावन बनाना, सतो प्रधान बनाना, जितना आप आत्मा इस प्रकृति से न्यारे होकर, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में बैठकर बाबा से शक्ति लेते हुए जो आप संकल्प करेंगे, जो आप किरणें फैलाएंगे, जो वाइब्रेशंस देंगे, उससे प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी। बिना आप इस प्रकृति से परे हुए बिना आप अगर प्रकृति को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो आपका संकल्प काम नहीं करेगा, आपका वाइब्रेशंस काम नहीं करेगा। अर्थात प्रकृति सतो प्रधान नहीं बनेगी। जब तक आप अपनी स्थिति इस प्रकृति से परे की नहीं बना लेंगे, तब तक आप आत्मा के द्वारा प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ कर्म है कि भगवान के साथ कनेक्ट होकर अपनी आत्मा को पावन बनाना। आत्मा पावन तब बनेगी जब थोड़ी देर एक ही संकल्प में बाबा के साथ जुड़े रहेंगे और कोई संकल्प ना आए, बस हम आत्मा मेरा बाबा बस बाबा में समाए रहो। ये थोड़ी देर की निरंतर की स्थिति ही आपके पाप को भस्म करेगी। ये बहुत पावरफुल अग्नि है। आत्मक स्वरूप में टिककर परमात्मा के स्मृति में खो जाना दूसरा संकल्प ना आए, ये बहुत पावरफुल आग है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि 5 मिनट अगर कोई कंटिन्यू एकाग्र हो जाए और कोई संकल्प ना आए तो एक जन्म का पाप खत्म हो जाता है। इतनी तेज आग है। लेकिन इसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति और अशरीरी होने का अभ्यास बहुत चाहिए। अगर अशरीरी होने का अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके विक्रम बहुत कम विनाश होंगे। होंगे जरूर, लेकिन बहुत कम होंगे। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य से त्याग है, त्याग से तपस्या है और तपस्या से सेवा है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा था, त्याग तपस्या सेवा कंबाइंड है। लेकिन त्याग का भी आधार वैराग्य है। बिना वैराग्य के त्याग हो नहीं सकता। वैराग्य ज्ञान के आधार से, ज्ञान का गहराई से मनन करो कि ये तो सब विनाश हो जाने वाला है। मैं आत्मा चाहूंगी तो, नहीं चाहूंगी तो, ये सब खत्म हो जाएगा। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे आत्मा को, बाप को याद करके स्वयं के विकर्म को विनाश करना है, प्रकृति शक्ति को भी पावन बनाना है, क्योंकि मुझ आत्मा को ही सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करना है। तो जब मुझे ही राज्य करना है तो मुझ आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना भी पड़ेगा। अगर आप प्रकृति को कम सतो प्रधान बनाएंगे तो आप सतयुग के आदि में नहीं आएंगे। जब प्रकृति के सतो प्रधानता की स्टेज कम हो जाएगी तब आपका जन्म होगा। इसलिए आत्मा को भी पावन बनाना है, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। जितने जीव जंतु प्राणी हैं सबको दुख से मुक्त करना है। क्यों? क्योंकि आपके राज्य में सतयुग में कोई भी जीव जंतु प्राणी दुख देने वाले नहीं होंगे। तो अभी जब आप उन्हें मुक्त करेंगे दुख से तब आपको वहां दुख नहीं मिलेगा। ये सेवा श्रेष्ठ कर्म है। इस कर्म को ब्राह्मण आत्माओं को करना ही, इस कर्म का बल है कि आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। शक्तिशाली बन जाती है और फल है राज घराने में आएगी, राज घराने में आएगी। श्रेष्ठ कर्म करने वाली राजघराने में, अलौकिक दिव्य कर्म करने वाली राजधानी में आएगी और सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाला राज्य पद पाएगा, अष्ट में आएगा। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ कर्म है कि आपका हर कर्म विशेषता वाला हो। जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म विशेषता वाला था। क्या? ब्रह्मा बाबा के संकल्प में हर समय हर बच्चे को विशेष बनाने का उमंग उत्साह रहता था। चेक करना अपने को कि मैं आत्मा हर एक को विशेष बनाने का मेरे अंदर उमंग रहता है कि ये भी आत्मा विशेष आत्मा बन जाए। ऐसे ब्रह्मा बाबा के वृत्ति की विशेषता थी कि वृत्ति के द्वारा हर एक बच्चे को उमंग उत्साह में लाना, वृत्ति के द्वारा। बड़ी ऊंची स्टेज है। अर्थात जब मैं आत्मा स्वयं उमंग उत्साह में होंगी, जैसी होंगी वही वाइब्रेशंस फैलेगा, उसी का प्रभाव दूसरी आत्मा पर पड़ेगा। आप सबको अनुभव होगा, कभी कभी आपके पास कोई आकर कहता है, आपके यहाँ तो बड़ी शांति की अनुभूति होती है, आज आपसे ये अनुभव हुआ, आज आपको देखा तो ऐसा लगा, इसका कारण यही था कि उस समय आपकी वो स्थिति थी, उसका वाइब्रेशंस फैल रहा था। तो वृत्ति के द्वारा हर एक को उमंग उत्साह में लाना। बाड़ी की विशेषता थी हर एक को हिम्मत दिलाने वाले बोल। ये थोड़ा गहराई की बात है। कई ब्राह्मण आत्माएं या अन्य आत्माएं गिरे हुए को गिराते हैं, लेकिन नहीं, गिरे हुए को हिम्मत दिलाने वाले बोल। उमंग उत्साह में लाने वाले बोल ब्रह्मा बाबा के बोल की विशेषता थी। कमजोर आत्मा को उड़ती कला के विधि के द्वारा उड़ाने वाले बोल। सेवा के योग्य बनाने वाले बोल। ऐसे अनमोल मधुर और युक्ति युक्त बोल थे। चेक करना अपने को कि मुझ ब्राह्मण आत्मा के मुख से किस प्रकार के बोल निकल रहे। क्या हर एक को उड़ाने वाले बोल हैं, या ऐसा निकल जाता है जिससे उसकी स्थिति और गिर जाती है। उसकी स्थिति अगर गिरती है उसका तो नुकसान होता ही है, लेकिन हमारी की हुई तपस्या का बल और फल खत्म हो जाता है, वही श्रापित हो जाती है। अगर आप श्रेष्ठ भाव रखा भावना रखी तो आपके तपस्या के बल और फल में हजार गुना वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ऐसे ब्रह्मा बाबा के कर्म की विशेषता थी, कर्म बच्चों के साथ करके सिखाया, कर्म के महत्व को बताने के लिए, अनुभव कराने के लिए बच्चों के साथ कर्म करके सिखाया, कर्म योगी बनाया। ऐसे ब्रह्मा बाबा के देखने की विशेषता क्या थी, हर एक बच्चे के गुण को ही देखा, हर एक बच्चे के विशेषता को ही देखा। ऐसे ब्रह्मा बाबा की सोच की क्या विशेषता थी, बाबा जानता था ये बच्चा लास्ट मड़का का दाना है, फिर भी उसके लिए सदा आगे बढ़े ऐसे शुभ सोच रखा, श्रेष्ठ सोच रखा। तो ऐसी विशेष कर्म करने वाली आत्मा को बल क्या मिलता है? ऐसी आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाती है। जो संकल्प करती है, जिसके लिए वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, जिसके लिए जो बोल देती है वो हो जाता है, सिद्धि स्वरूप बन जाती है। जैसे आज मुरली के वरदान में था, प्रकृति और पांच विकार दासी बन जाते हैं। जैसे महाराजाओं के पीछे चोला उठाने वाले होते हैं, ऐसे सेवाधारी बन जाते हैं। और इसका फल क्या है? ऐसी आत्मा अष्ट रतन में आ जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, हर एक कर्म आपका विशेषता वाला कर्म हो, देने वाला कर्म हो, और इस कर्म का फल अष्ट रतन की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति।